तारीख 1 जनवरी दिन बुधवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दाश। भीमा कोरेगांव युद्ध की 202वीं बरसी पर एकत्र हुए लाखों लोग, प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
10,000 के करीब पुलिस है यहाँ के, 15 से 20 किलोमीटर के पूरे एरिया में है और जिला प्रशासन ने इंटरनेट पूरी तरीके से बंद किया है।
इसरो ने कहा मानव मिशन के लिए 4 लोगों को चुना गया।
4 पीपल नाउ दे आर आइडेंटिफाइड फॉर द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग।
जनरल बिपिन रावत बने नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, कई बार दे चुके हैं विवादित बयान।
मैं तो समझता हूँ उन्होंने गलत किया, मगर गवर्नमेंट की अब डिसीजन है तो ये अगले 3 साल
होंगी। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। भीमा कोरेगांव युद्ध की 202वीं बरसी पर आज पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में लाखों की संख्या में दलित इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भीमा कोरेगांव में बने विजय स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि दी। 2 साल पहले यहां हुई हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी और हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए। 1 जनवरी 2018 को इसी कार्यक्रम के दौरान हिंसा हो गई थी। हांगकांग में नए साल पर लोकतंत्र के समर्थन में हुए मार्च में पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। यहां मार्च के लिए हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ इकट्ठा हुए थे। ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ लेकिन बाद में हिंसक हो उठा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। मार्च में मौजूद कई लोग पोस्टर के जरिए पुलिस कार्रवाई की जांच, गिरफ्तार किए गए लोगों की सुरक्षा और पूर्ण लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। हांगकांग में सबसे बड़े लोकतंत्र समर्थक समूहों में से एक सिविल ह्यूमन राइट्स के नेता जिमी शैम ने कहा कि लोग दमन की कोशिशों के आगे नहीं झुकेंगे। हमने देखा है कि आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक सरकार स्पार्क अलायंस को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद शिक्षकों, फिर शायद सिविल सेवकों और पार्षदों की बारी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पर दबाव डाला जा रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। जिसे भी दबाने की कोशिश की जाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। ये थे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जिमी शैम के शब्द। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। आग के चलते करीब 200 संपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं। लगातार बढ़ती आग के बीच राहत कर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। न्यू साउथ वेल्स में 100 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। राज्य के रूरल फायर सर्विस कमिश्नर शेन फिट्सिमन्स ने वहां के हालातों की जानकारी दी।
We've identified 3 people having lost their lives as a result of these fires.
यहाँ 3 लोगों की जान चली गई है और एक अन्य शख्स आग में फंसा हुआ है। हम उसे निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दूरदराज के इलाकों तक हमारी पहुंच सीमित है। हमें सड़कों और हवाई मार्ग के जरिए भी वहां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। ये थे न्यू साउथ वेल्स के रूरल फायर सर्विस कमिश्नर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक में ईरान समर्थित विद्रोही लड़ाकों के गुट ने अपने समर्थकों को राजधानी बगदाद में अमरीकी दूतावास से बाहर आने का आदेश दिया है। अमरीकी दूतावास पर 31 दिसंबर 2019 को हजारों लड़ाकों ने हमला बोल दिया था। जब वो परिसर के बाहर घेराबंदी के लिए तैयार दिखाई दिए तो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज नाम के एक गुट ने उन्हें दूतावास से बाहर आने का आदेश दिया। अमरीकी दूतावास पर यह हमला अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में किया गया था। अमरीकी हमले में ईरान समर्थित 25 इराकी लड़ाके मारे गए थे। सूडान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र दारफूर में जातीय संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 70 के करीब है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते एक अरबी शख्स की मौत के बाद अल जनेना शहर में और उसके आसपास हिंसा भड़क उठी थी। अरब लड़ाकों ने मासलित जातीय समूह के सदस्यों पर हमला बोल दिया, उनकी संपत्ति को जलाया और लूटा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बाढ़ के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यहां भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से यातायात जाम हो गया है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। रनवे पर पानी भर जाने से जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے سال 2020 کی پہلی شام کا پہلا دن بھر کارکرم سن رہے سبھی شروتاؤں کو مانسی داش کا ابھیوادن۔ آدھے گھنٹے کا یہ کارکرم آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کے پونے کے نزدیک بھیما کوریگاؤں میں آج وہاں ہوئے یدھ کی 202ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بھیما کوریگاؤں یدھ میں مرنے والے یودھاؤں کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے آج لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ وہاں ایکتر ہوئے ہیں۔ آج کے دن دلت سمودائے سے جڑے لوگ مہار ریجیمنٹ کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور شردھانجلی دیتے ہیں جنہوں نے 1818 میں پیشوا کی سینا کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے پران گنوائے تھے۔ 2018 میں اس جیت کا 100ویں جشن منانے کے لیے یہاں بڑا آیوجن کیا گیا تھا، لیکن ہنسا بڑھک اٹھی تھی جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔ اس دوران کئی واہنوں میں بھی آگ لگا دی گئی تھی، لیکن اس بار یہاں آیوجن کو لے کر ساودھانی برتی گئی ہے۔ ہماری سہیوگی حلیمہ قریشی سویرے سے بھیما کا کورے گاؤں میں ہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی اور جانا کہ اس بار وہاں کس طرح کی سرکشا ویوستھا ہے، کس طرح کے حالات ہیں۔
مانسی، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اندازہ اگر لگا سکتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں یہاں پر۔
کیا یہ پولیس کا آنکڑا ہے یا یہ آپ کا انومان ہے؟
یہ ہمارا انومان ہے، اور پولیس سے بھی ہم نے بات کی تو 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی انہوں نے ایک تعداد بتائی۔ یہ آنکڑا جو تھا قریب شام 4 بجے کے قریب کا تھا۔
2 سال پہلے بھیما کورے گاؤں میں جب اسی طرح کا ایک آیوجن ہوا تھا تو وہاں پر ہنسا ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اس سال کس طرح کی ویوستھا کی گئی ہے؟
کافی پختہ انتظام اس سال کیے گئے ہیں۔ 2018 کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کافی پختہ انتظام کیے ہیں۔ سیکورٹی کافی اچھی ہے، 10,000 کے قریب پولیس جو ہے یہاں کے 15 سے 20 کلومیٹر کے پورے ایریا میں ہے، اور ضلع پرشاسن نے 1 سے 1.5 مہینہ پہلے سے یہ پوری جو آیوجن ہے یہاں کا جو پروگرام ہے اس کی تیاری شروع کی تھی۔ الگ الگ سماج کے لوگوں کے ساتھ میں میٹنگس لینا ہو، پارکنگ کی ویوستھا کی گئی ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اسی طرح سے شوچالیہ ہو، یہ سبھی چیزوں کا انتظام جو ہے وہ اچھے سے کیا گیا ہے۔ جو لوگوں کا آنا ہے وہ مگر کم نہیں ہوا ہے ہم بالکل کہہ سکتے ہیں مانسی، اور ابھی مہاراشٹر پردیش کے علاوہ دیش بھر سے پورے امبیڈکر رائٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بھی آتے ہیں۔
جو آیوجک ہیں انہوں نے کس طرح کے نیتاؤں کو بلایا ہے اور کس طرح کے بھاشن وہاں ہو رہے ہیں؟
پر بھاشن کے لیے کسی الاؤڈ نہیں کیا گیا ہے، کافی لوگوں کو نوٹس دی گئی ہے۔ اپنے ضلع کا جو جوریڈکشن ہے وہاں پر وہ نہیں آ سکتے تھے، وہ یہاں پر آ کر بھاشن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ کسی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ آئے، حالانکہ پولیس کے کئی لیڈرس بھی آئے لیکن کسی کی بھاشن وہاں پر نہیں ہوئے۔ جو سانسکرتک کارکرم ہے جو آجو باجو میں لوگوں کو دی گئی ہوئی جگہ تھی وہاں پر کچھ بھجن کے طرح کے جو پروگرامس ہیں وہ بالکل ہوئے۔
حلیمہ، خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ بھیما کورے گاؤں علاقے میں انٹرنیٹ بند ہے ابھی؟
بالکل، ضلع پرشاسن نے انٹرنیٹ پوری طریقے سے بند کیا ہے۔ ویسے تو کوئی اسپشٹتا دی گئی نہیں ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ کیوں بند کیا گیا، حالانکہ ہم نے ان کو پوچھا بھی، لیکن 30 کلومیٹر کا یہ جو پورا دائرہ ہے وہاں پر انٹرنیٹ پوری طرح سے بند ہے، تو اس لیے میڈیا کرمیوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
پولیس لوگوں کو اٹکا بھی رہی ہے آنے میں یا لوگوں کے آنے میں کوئی پابندی نہیں ہے؟
لوگوں کے آنے میں تو بالکل بھی پابندی نہیں ہے، ہم لوگوں سے ہم نے جب بات کی تب ان کے دل میں کہیں پر بھی ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں بس یہ ہے کہ ان کو یہاں پر آنا ہے اور امبیڈکر جی کی جو انہوں نے دی گئی ایجوکیشن ہے اور ان کے حق کے طور کے اوپر کی گئی لڑائی ہے اسی کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر آتا۔
بھیما کورے گاؤں میں وجے دیوس کے موقع پر جمع ہوئے لاکھوں لوگ، پرشاسن نے احتیاطاً بند کیا انٹرنیٹ، جانکاری دے رہی تھی حلیمہ قریشی۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارتیہ انترکش انوسندھان سنگٹھن یعنی اسرو کا، جس کے پرمکھ کے سیون نے پشٹی کی ہے کہ چندرما کے لیے اسرو چندریان 3 کی پریوجنا پر کام کر رہا ہے جسے 2021 تک پرکشیپت کیا جا سکتا ہے۔ وہیں مانو مشن گگنیان کے لیے بھی 4 انترکش یاتریوں کے چین کی بات انہوں نے کی ہے۔ اس سے پہلے کیندریہ کیبنٹ نے چندریان 3 کے پرستاو کو سویکرتی دی تھی۔ سنیے بنگلورو سے ہمارے سہیوگی عمران قریشی کی رپورٹ۔
انترکش میں بھیجے جانے والے بھارت کے پہلے مانو مشن کے لیے تیاری میں کافی پرگتی ہوتی دکھ رہی ہے۔ اس کے لیے انترکش یاتروں کو چن لیا گیا ہے۔ 3 مہینے پہلے مانو مشن کے لیے انترکش یاتروں کو چننے کے کام کے شروع ہونے کی خبریں ملی تھی۔ آج اسرو پرمکھ ڈاکٹر کے سیون نے پترکاروں کو بتایا، ہم نے انترکش یاتروں کو چن لیا ہے اور انہیں ٹریننگ کے لیے رشیا بھیجا جا رہا ہے۔ ان انترکش یاتروں کا میڈیکل فٹنس ٹیسٹ انسٹیٹیوٹ آف ایویشن میڈیسن میں ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں رشیا بھی بھیجا گیا تھا۔ وہ سبھی بھارتیہ وایو سینا کے ٹیسٹ پائلٹ ہیں۔ ہم ابھی بتا نہیں پائیں گے کہ ان میں سے کتنوں کو انترکش میں بھیجا جائے گا۔ یہ تھے ڈاکٹر کے سیون کے شبد۔ डॉक्टर सिवन ने ये नहीं बताया कि ये अंतरिक्ष यात्री आखिर कौन है और उनका नाम क्या है, पर उन्होंने चंद्रयान 2 के बारे में काफी सवालों के जवाब दिए और ये भी कहा कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर बनाया जाएगा। इसका कारण ये है कि चंद्रयान 2 का रोवर अभी भी चंद्रमा पर काम कर रहा है और चंद्रयान 3 से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को जोड़ा जाएगा। चंद्रयान 2 की नाकामयाबी के बारे में डॉक्टर सिवन ने कहा,
See what really happened in the Chandrayaan 2 was, in the forward descent phase, this phase contains 4 phases.
चंद्रयान 2 में जिस गति से लैंडर को चंद्रमा पे उतरना था वो उससे भी ज्यादा गति से उतरा था, इसीलिए उसकी कठिन लैंडिंग हुई। ये थे डॉक्टर के सिवन के शब्द। डॉक्टर सिवन से जब पूछा गया कि चंद्रयान 2 की नाकामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया था, उस समय उन्होंने क्या कहा था, आज हंसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो दोनों के लिए एक भावनात्मक क्षण था। आपको याद दिला दें कि मोदी के सिवन से गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कल जनरल बिपिन रावत को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। अब जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की कमान जनरल बिपिन रावत के हाथ में होगी, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी इस नियुक्ति पर कई राजनीतिक पार्टियां नाराज हैं और कारण है ये कि आर्मी प्रमुख रहते उन्होंने कई राजनीतिक बयान दिए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे गलत फैसला बताया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया है। जनरल बिपिन रावत के बयानों पर पहले कई बार विवाद पैदा हुए हैं। सुनिए BBC संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
जनरल बिपिन रावत ने अपने बयानों से पैदा हुए विवाद को ठंडा करने के लिए सफाई दी है। उन्होंने भारतीय सेना के राजनीति से संबंध पर ये टिप्पणी की।
As we are witnessing in a large number of university and college students,
जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र हजारों की संख्या में भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं जो हमारे शहरों में हिंसा और आगजनी कर रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं है। नेता वो होता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है और सही सलाह देता है।
उन्होंने ये सफाई तब दी जब नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर उनकी टिप्पणी से विवाद हो गया था। इस कानून के चलते देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है और कई इलाकों में विरोध के दौरान हिंसा भी हुई है। जनरल बिपिन रावत ने इन विरोध प्रदर्शनों की आलोचना की थी।
हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। ऐसा है, हम लोग जो है जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं।
लेकिन ये पहली बार नहीं था जब जनरल बिपिन रावत ने राजनीतिक बयान दिया हो। इससे पहले थल सेना अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई बार विवादास्पद बयान दिए थे। सितंबर 2019 में जब केंद्र सरकार ने कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी थीं, तब जनरल रावत ने कहा था कि कश्मीर में संचार व्यवस्था दुरुस्त है, सभी टेलीफोन लाइनें काम कर रही हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं है।
जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से वहाँ इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट पर पाबंदी हटाई जा रही है। बीते कल ही वहां मोबाइल SMS सेवाएं बहाल की गई हैं।
जून 2018 में उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की आलोचना की थी।
मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। इनमें से कई रिपोर्टें दुर्भावना से प्रेरित होती हैं। मानवाधिकारों को लेकर भारतीय सेना का रिकॉर्ड काफी बेहतर है।
फरवरी 2018 में उन्होंने असम में अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विस्तार पर राजनीतिक टिप्पणी की थी।
AIUDF नाम से एक पार्टी है। आप देखें तो BJP के मुकाबले इस पार्टी ने बड़ी तेजी से तरक्की की है। अगर हम जनसंघ की बात करें, जब उसके मात्र 2 सांसद थे और अब वो जहाँ हैं, असम में IEUDF की तरक्की इससे अधिक है।
उनके इस बयान की कई हलकों में काफी आलोचना हुई। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में तैनाती के दौरान एक आम कश्मीरी व्यक्ति को जीप के बोनट पर बांधकर घुमाने वाले मेजर लितुल गोगोई का बचाव किया था और कहा था कि फौज को नए नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं।
हमारे नौजवानों को बहकावे में लाकर सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए या अन्य साधनों से इनको बहकाया जा रहा है। फौज के खिलाफ बहकाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बहकाया जा रहा है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बहकाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनरल रावत की तारीफ करते हुए उन्हें उत्कृष्ट अफसर बताया है। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति की जरूरत और उनके विवादित बयानों के बाद उनकी नियुक्ति को कैसे देखा जाए, ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले जेंस डिफेंस वीकली के इंडिया संवाददाता और रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी से।
मैं तो समझता हूँ उन्होंने गलत किया, मगर गवर्नमेंट की अब डिसीजन है तो ये अगले 3 साल मोदी साहब की सरकार भी है, 3.5-4.5 साल और है, तो ये फैक्ट जो है ये रियलिस्टिक फैक्ट है।
कई पार्टियां अब इसका विरोध कर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उन्हें सरकार के समर्थन में बोलने का इनाम दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि जी सरकार का ये गलत फैसला है।
जो ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं काफी हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि जनरल रावत साहब पिछले 2-3 साल ये आर्मी चीफ रहे हैं और उन्होंने बहुत बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी की हैं, कश्मीर के ऊपर भी की हैं, अफगानिस्तान के ऊपर भी की हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी की हैं। कोई 10 दिन पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज या CAA की जो एजिटेशन चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने अपना बयान दिया। तो ये बात तो गलत है, मगर सरकार का तो इसमें टोटल कंट्रोल है और सरकार इससे पीछे नहीं जाने लगी।
जी सर, सर आपने एक चीज अभी कहा था कि नेवी और जो एयरफोर्स है उनको हल्का सा ये था कि कहीं आर्मी डोमिनेट ना करे क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी फोर्स है। क्या ताकत का एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होना, क्या उससे सरकार को आसानी होती है सेना के इस्तेमाल में?
भारत इतना अमीर मुल्क नहीं है और इंडिविजुअल सर्विसेज जो हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स वो अपनी जो एक्विजिशन करती हैं, जो अपना असला लेती हैं, इक्विपमेंट लेती हैं, उसमें एक जॉइंटनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान MOD या पिछले 25-30-40 साल से नहीं है वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। तो इंडिविजुअल सर्विस में जैसे किसी सबमरीन ले लिया, किसी ने एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया, किसी ने फाइटर ले लिया, किसी ने आर्टिलरी ले ली, किसी ने टैंक ले लिए, तो ये इंडिविजुअल सर्विस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्ड हो रही हैं, मगर टुगेदर नहीं बिल्ड हो रही। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में 17 इंडिविजुअल कमांड्स हैं, 7 आर्मी में हैं, 7 एयरफोर्स में हैं और 3 नेवी में है। तो इनकी जो इक्विपमेंट है, इनका जो कम्युनिकेशन है, इनका जो ट्रेनिंग है, ये सब अलग अलग खर्चे होते हैं इनके। तो अगर ये ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन या इक्विपमेंट का इकट्ठा कर दिया जाए तो थोड़े पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत किल्लत है, डिफेंस बजट्स कम हो रहे हैं और इक्विपमेंट जो है उसकी जो विश लिस्ट है, उसकी जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल।
तो ये उम्मीद है थोड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो CDS है वो एक नया डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कहलाता है, वो बनाया जाएगा और वो CDS जो है वो हेड करेंगे, मगर उसका क्लैश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी हो सकता है और उसमें मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में या 1 साल में उसमें कंफ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन होगा और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा।
विश्लेषण कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी। रेडियो सुनने वाले श्रोता जिस एक आवाज को कभी भूल नहीं पाएंगे वो है प्रस्तोता अमीन सयानी की आवाज। साल की शुरुआत करते हैं इसी जादू भरी दिलकश आवाज के साथ। कई साल पहले BBC संवाददाता ओंकारनाथ श्रीवास्तव ने वे दिन वे लोग कार्यक्रम की एक कड़ी में अमीन सयानी से सुभाष बोरा की हुई बातचीत सुनवाई थी। BBC के खजाने से आज आपको सुनवाते हैं अमीन सयानी का वही दशकों पुराना इंटरव्यू।
वे दिन वे लोग। प्रस्तुतकर्ता ओंकारनाथ श्रीवास्तव। नमस्कार। रेडियो के माध्यम से पिछले 50 साल से हिंदी की जो आवाजें चाहे विज्ञापन ही के जरिए लगातार गूंजती रही हैं, अगर उनकी एक छोटी से छोटी सूची भी बनाई जाए तो उसमें अमीन सयानी का नाम जरूर आएगा। कोई 17 साल हुए जब लंदन में उनसे मिलने का मौका मिला था, तब वो एक किंवदंती बन चुके थे और मजे की बात है कि स्वयं BBC हिंदी सर्विस के प्रति उनका भी कुछ वैसा ही कुतूहल का भाव था। हमारे तब के साथी सुभाष बोहरा ने थोड़े से समय में उनसे बहुत सी बातें पूछ डाली थी। तो लीजिए सुनिए 17 साल पूर्व की वही बातचीत। सुभाष बोहरा ने बीबीसी के स्टूडियो में उनका स्वागत किया तो श्री अमीन सयानी कह उठे,
भाई स्वागत तो आपने किया भाई साहब जी, लेकिन ये स्टूडियो, ये बीबीसी, यहाँ आकर मुझे कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि बचपन से बीबीसी का नाम सुन रहा था और बस एक आदर्श था हम हिंदुस्तान के ब्रॉडकास्टरों के लिए कि भाई एक ना एक दिन बीबीसी ज़रूर जाएंगे। और देखिए इत्तेफाक न सिर्फ आ गया हूँ बल्कि आप मुझे इंटरव्यू भी कर रहे हैं, बोलने का मौका मिल रहा है।
अमीन साहब, एक ज़माना हुआ आपने बीबीसी की बात की, एक ज़माने से मैं बीबीसी को सुन रहा था और एक ज़माने से मैं अमीन सयानी को सुन रहा था, आज मैं दोनों के साथ हूँ
भाई,
मुझे बड़ी खुशी हुई है।
जरा नवाजी आपकी।
आप ये बताइए अमीन साहब के प्रसारण की दुनिया में आप किस सन में आए?
भाई अगर आप प्रसारण यानी रेडियो प्रसारण की बात कर रहे हैं तो हुआ ये कि मैं कॉलेज में पढ़ा करता था सन 1951-52 में। उस ज़माने में रेडियो सिलोन के जो कमर्शियल सर्विसेज हैं वो शुरू हुए। अब उस ज़माने में जो एजेंसी थी हिंदुस्तान में रेडियो सिलोन की, उसमें मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु हमीद सयानी साहब, जिन्होंने मुझे ब्रॉडकास्टिंग उस वक्त से सिखाया जब मैं करीब 9 साल का था और इंडिया रेडियो में मैंने
जो बॉर्नविटा क्विज़ भी किया करते थे।
हाँ, बॉर्नविटा क्विज़ किया करते थे। मुझे मतलब पढ़ाई से शौक़ तो था लेकिन वो रिकॉर्डिंग से ज़रा ज़्यादा ही शौक़ था, इसलिए मैं चला जाया करता था उस स्टूडियो में जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के एक कोने में हुआ करता था और वहाँ रिकॉर्डिंग सुना करता था। एक रिकॉर्डिंग खास तौर पर एक प्रोग्राम जो कि हफ्तावार प्रोग्राम था, साप्ताहिक प्रोग्राम
नहीं, गीतमाला
नहीं, उससे पहले
की बात है,
एक फुलवारी नाम का प्रोग्राम होता था जो कि एक समझ लीजिए कि प्रोडक्ट बी जो कि एक हेल्थ ड्रिंक था उसके लिए प्रोग्राम हुआ करता था। हैं, एक बार हुआ ये कि वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने देखा कि उस प्रोग्राम के कमर्शल अनाउंसर एक हफ्ता नहीं आए, तो मैं चूंकि वहाँ हर बार आया करता था उन्होंने कहा भाई देखो अमीन तुम ज़रा ये अनाउंसमेंट जो है वो पढ़ दो आज। तो मैंने पढ़ दिया, उनको पसंद आ गई आवाज़, कहने लगा अच्छा भाई अब तुम हर हफ्ते आया करो। मैंने कहा हर हफ्ते आया करो मतलब मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ तुम कमर्शियल पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी मुझे पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा पैसे पैसों की तो बात ही नहीं है भाई, तुम्हें तो हर हफ्ते एक टिन प्रोडक्ट बी मिला करेगा पीने के लिए।
अच्छा, तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई, यानी शौक के साथ साथ इत्तेफाक भी था।
हाँ, और उसके साथ साथ सेहत भी, क्योंकि वो हेल्थ ड्रिंक था भाई।
अमीन साहब, अगला सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ,
फरमाइए,
हो सकता है आपको कुछ अच्छा ना भी लगे। आप बड़े जाने माने प्रसारक हैं कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में, भारत के लगभग जितने भी रेडियो स्टेशन हैं वहाँ से आपके प्रोग्राम चलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपके कार्यक्रमों में आपकी आवाज़ उसकी जान है, हर आदमी चाहता है कि अमीन सयानी की आवाज़ ली जाए, लेकिन उसके साथ उन कार्यक्रमों में कई बार कुछ सस्तापन कंटेंट वाइज जो है वो सड़क की भाषा रहती है, ऐसा क्यों?
अरे भाई ये भी सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने ये बात मुझसे पूछी, ये बात जो मेरे रग रग में दौड़ती है। भाई देखिए मैं उस भाषा का कायल हूँ जो कि गांधी जी की भाषा थी हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी जिसमें उर्दू और हिंदी का संगम हो और हर भाषा से, यानी न सिर्फ उर्दू और हिंदी से बल्कि जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा सा संगम हो, एक ऐसी हिंदुस्तानी हो जो कि आम आदमी समझ सके, जिसमें सरलता हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें मिठास हो, जिसमें प्यार हो। आप जो सड़क की भाषा कहते हैं ना, मेरे हिसाब से वही भाषा असली हिंदी है या असली उर्दू?
नहीं नहीं, मैं हिंदी और उसमें नहीं जा रहा था भाषा में।
अच्छा, सड़क की भाषा।
सरलता ठीक है, सरलता हम भी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे शब्द ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं जो आम हिंदुस्तानी बोलचाल में समझ सके। कमर्शियल प्रोग्रामों में इस तरह की कुछ बातें होती हैं कि जैसे लड़कियों की बात आप कर रहे हैं या इस ढंग से बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कहा भी घर में चार लोग बैठे हैं कि आपने कुछ जरूरत से कुछ ज्यादा कहा गया।
अच्छा, एक बात जरूर ख्याल रखिए कि इन 26 साल वर्षों में जब से मैं ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल कर रहा हूँ मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही जो कि घर के लोग साथ बैठकर ना सुन सकें।
ठीक।
हाँ, ये जरूर ऐसी बात जरूर कही जो कि घर के लोग साथ बैठकर मजा ले सकें और मुस्कुरा सकें और कहेंगे अरे वाह भाई, ये तो अमीन साहब ने काफी कुछ मजेदार चटपटी तीखी बात कही। तो भाई ये मजा अगर नहीं होगा, ये चटपटापन नहीं होगा, ये मसाला नहीं होगा, ये नमक मिर्च नहीं होगा, तो भाई वो तो फिर वो सीधा साधा स्टेशन अनाउंसर बनकर रह जाएगा वो अनाउंसर।
अमीन साहब, मोनोपोली की बात करूंगा, हर क्षेत्र में मोनोपोली है।
एक मिनट भाई सुभाष भाई, आप ये तो बताइए कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप उससे आप सहमत हैं या नहीं है?
बात यह है कि मैं सहमत हूँ या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे सुनने वाले उससे सहमत हैं या नहीं। अमीन साहब, मोनोपोली की मैं बात कर रहा था कि हर क्षेत्र में मोनोपोली है। अभी हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया आशा भोसले को, उनसे भी यही सवाल मैंने किया, आपके क्षेत्र में भी मोनोपोली है? हर आदमी चाहता है कि, या आदमी चाहता है या आपके दूसरे लोग आने चाहते हैं, दो चार लोग जिनमें आप भी एक हैं, कि आपका इतना काम है कि दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलता, या आप लोग आने नहीं देते, या बिजनेसमैन चाहता नहीं दूसरों को लेना।
भाई मेरे अपने ग्रुप में, यूनिट में कम से कम 20 वॉइसेस हैं और 12 राइटर्स हैं, और जितने अच्छे नए लोग आते हैं उनको सबको मैं पहले सबसे पहले चांस देने की कोशिश करता हूं।
अमीन साहब, आखिर में आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपके पास इतना काम है, पारिवारिक जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता?
जरूर पड़ता अगर मेरी बीवी मेरे साथ काम न कर रही होती। मेरी बीवी पिछले 20 साल से, यानी हमारे नहीं 22 साल से, शादी को 20 साल हो गए, 22 साल से वो हमारे साथ काम कर रही हैं और ख़ुद प्रोड्यूस करती हैं, प्रोग्राम लिखती भी हैं, कभी कभार स्क्रिप्ट चेकिंग करती हैं, बहुत मतलब पुराने रिकॉर्ड्स की एक्सपर्ट हैं, और मेरा आधा काम ही करती हैं। इसलिए मैं जितनी देर तक रहता हूँ दफ्तर में तब तक मेरी बीवी भी रहती है, इसलिए कम से कम वो उलझन तो नहीं है, और उलझन हो तो हो।
और लंदन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
लंदन में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। एक तो अच्छा ये लगा कि साहब मुझे ये बम्बई का एक नया कुछ अच्छा सा प्यारा सा रूप नज़र आया, यानी गाड़ियाँ भी चलती हैं तो लेफ्ट हैंड पर ही चलती हैं, वरना अमेरिका में तो मुसीबत हो जाती थी कि रास्ता पार करें तो दाएं देखें या बाएं।
लंदन देखकर बम्बई की याद आई?
बम्बई की याद आई।
अमीन सयानी को लंदन देखकर बम्बई की याद आई। आपको अमीन सयानी की आवाज सुनकर भला किसकी याद आई, कौन कौन सी भूली बिसरी बातें आपको याद आ गईं? अगर हमें भी बताना चाहें या हमारे किसी भी कार्यक्रम के लिए पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता नोट कर लीजिए, BBC हिंदी सर्विस, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। पता आपने नोट कर लिया तो ये भी नोट कर लीजिए कि भूली बिसरी यादों पर आधारित यह वे दिन वे लोग कार्यक्रम हर इतवार हमारी तीसरी सभा में प्रसारित किया जाता है। आज के वे दिन वे लोग कार्यक्रम से अब ओंकारनाथ श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। भीमा कोरेगांव युद्ध की 202वीं बरसी पर आज पुणे के नज़दीक भीमा कोरेगांव में लाखों की संख्या में दलित इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भीमा कोरेगांव में बने विजय स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि दी। हांगकांग में नए साल पर लोकतंत्र के समर्थन में हुए मार्च में पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ मार्च के लिए हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ इकट्ठा हुए थे। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। आग के चलते करीब 200 संपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं। इराक में ईरान समर्थित विद्रोही लड़ाकों के गुट ने अपने समर्थकों को राजधानी बगदाद में अमरीकी दूतावास से बाहर आने का आदेश दिया है। अमरीकी दूतावास पर 31 दिसंबर 2019 को हजारों लड़ाकों ने हमला बोल दिया था। सूडान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र दारफूर में जातीय संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए हैं। BBC समाचार।
2020 की पहली शाम के पहले दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला रविशंकर कुमार ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।